بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم छोटे से मौलवी को जगह दे दो चेयरमैन साहब बैठे हुए थोड़ा सा इधर ना अरे थोड़ा सा इधर हो सामने हो ना अरे आप सामने हो वो तो वैसे ही नजर आ रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे का जो मकसद है वो फरमाया तत्तकून लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम हमारे दोस्त बन जाओ क्योंकि तकवा जो है वो अल्लाह ताला की दोस्ती और विलायत की बुनियाद है और रमजान शरीफ का जो मकसद है वो अल्लाह ताला ने लअल्लकुम तत्तकून फरमाया कि इस रोजे की वजह से हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं लिहाजा मेरे शेख मेरे पीर मुर्शिद हजरत वाला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नवर अल्लाह मरकदहु फरमाते हैं देखो अगर एक आदमी कहे कि रोजे में मुश्किल लगती है लेकिन अगर वो मंजिल पर नजर रखे तो फिर क्या मुश्किल है जैसे इंसान को एक दुश्वार और मुश्किल सफर है सफर दुश्वार भी है और मुश्किल भी है और मशक्कत वाला भी है मेहनत वाला भी है लेकिन उस सफर के वो जो सफर कर रहा है वहां उसका महबूब रहता है तो महबूब की वजह से उसका सफर कैसा गुजरेगा उसको पता चलेगा मुश्किल और मशक्कत अगर एक आदमी अब चित्राल का रहने वाला है डेढ़ दो दो दिन लग जाते हैं वहां जाने में लेकिन उसका घर वहां पर है और घर भी ऐसा कि नई नई शादी हुई है अब उसको ये सफर मुश्किल लगेगा पता ही नहीं चलेगा तो पता चला जब मंजिल पर नजर होती है तो सफर मुश्किल नहीं लगता इसलिए जब इस बात पर नजर होगी कि रोजे की बरकत से हम अल्लाह के वली और दोस्त बन जाएंगे फिर सफर कुछ मुश्किल लगेगा रोजा मुश्किल लगेगा बात यह है कि अभी हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है जिस दिन अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो गई फिर शरीयत पर अमल करना कुछ मुश्किल नहीं है ये शरीयत पर कि ये क्यों है फला ये क्यों है ये सब उस वक्त तक बातें हैं जब तक हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है जिस दिन अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी फिर ये सब बातें कुछ हैसियत नहीं रखती क्योंकि मोहब्बत पर नजर होगी और ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि हजरत अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे पैदा होगी तो हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत है जिनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत है उनकी जूतियों में पड़ जाओ यानी उनके पास बैठो अपने को उनके सामने मिटा दो तो उनकी सोहबतों से तुम्हारे दिल में भी अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी फिर कुछ मुश्किल नहीं है ये सारी बातें मुश्किलात मशक्कत और मेहनत उस वक्त तक है जब तक मोहब्बत नहीं है जिस दिन मोहब्बत पैदा हो गई फिर तो हर चीज लजीज और मजेदार लगेगी हर चीज लजीज और मजेदार लगेगी तो फरमाते थे मेरे शेख एक महीना अल्लाह ताला मश्क कराते हैं कि बीवी जो हलाल है उसके पास नहीं जा सकते दिन के वक्त में लेकिन ये मतलब नहीं कि रात को भी नहीं जा सकते तो बाज़े लोग डर के मारे रात को भी नहीं जाते अरे भाई रात को इजाजत है हालत है रोजा में रोजे की हालत में मना है लेकिन रात को जा सकता है और खाना पीना जो मना है वो भी दिन में मना है शाम को खा सकता है कि नहीं जा सकता बस यही हाल इजाजत है जाने की तो हलाल की मश्क करा रहे हैं कि एक महीना तुम हलाल से जब बचोगे तो हराम से बचना मुश्किल है अरे भाई जो आदमी हलाल से बचेगा उसके लिए हराम से बचना क्या मुश्किल है ये मश्क है ये तमरीन का महीना है, एक्सरसाइज की कराई जा रही है कि एक महीना तुम हलाल से बचो, तो जो हलाल से बचने का एहतमाम करेगा वो हराम से कितना बचेगा। लेकिन मेरे शेख फरमाते थे इसके साथ साथ थोड़ी सी मशक हराम से बचने की भी करो, नंबर और उनमें से कुछ खास बातों पर तवज्जो कर ले। नंबर एक तो ये कि बदनजरी ना करें, किसी की माँ बहन बहू बेटी को ना देखे, ना महरम औरतों को ना देखे, सड़कों पर भी नजर बचाए और टीवी भी ना देखे। अब रही बात के साहब कहते हैं हम टीवी इसलिए रखते हैं कि खबरें पता चलती रहे, तो फकीर यही कहता है कि जिस घर में बीवी है वहां टीवी की क्या जरूरत है, क्योंकि खबर तो बीवी सब दे देगी ना, किसके यहाँ बच्चा हुआ, होने वाला है, किसकी शादी हुई, किसका शौहर, किसकी बीवी, सब यहाँ तक के मुल्क की जितनी खबरें हैं वो भी पता चल जाएगी कि किसकी किससे शादी और कब शादी हुई, फलाने क्या सूट पहना था किस शादी में, वो सब दे देगी। तो बीवी के होते हुए टीवी की क्या जरूरत है भाई, कहा नहीं, असल में हम सिर्फ खबरनामा देखते हैं। तो मैंने पूछा एक साहब से, खबरनामा देखने की चीज होती है या सुनने की चीज होती है? तो हंसने लगे। मैंने कहा देखोगे तो यही होगा भाई, देखो मत सुन लो। और मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बाजे लोगों को बीबीसी के इतने दीवाने हैं कि अगर शेख की मजलिस उस वक्त हो तो मजलिस छोड़ देंगे, बीबीसी सुनेंगे, इतने ऐसे दीवाने। सफर में भी तो शेख की मजलिस छोड़कर बीबीसी सुन रहे, बाजों को ऐसा हौका होता है, ये बहुत बड़ा गैरुल्लाह है ये भी। तो हजरत फरमाते थे, हंस के फरमाते थे, सर बीबीसी सुनते हो, बाबा सा नहीं सुनते, यानी अल्लाह वालों की नहीं सुनते, अल्लाह वालों की भी सुनो, तो नजर बचाए। चाहे टीवी भी ही क्यों ना हो, चाहे टीवी ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके नाम पर आजकल बस क्या कहेंगे, क्या आलम है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी तो क्या कि जनाब अब मुख्तलिफ अकाउंट पर जैसे व्हाट्सएप है, वाइबर है, स्काइप है और इस तरह के मुख्तलिफ अकाउंट बनाते हैं, फिर उसमें अपनी तस्वीर भी लगा देते हैं। अरे भाई तस्वीर की क्या जरूरत है, और फिर तस्वीर भी बड़ी स्टाइलिश वाली लगाते हैं, जरा सजी सजाई, सवरी सवराई, और उसमें बड़े स्टाइल से बैठे हुए हैं जनाब ऐसे और वैसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तस्वीर हराम है, कयामत के दिन इसमें रूह डाली जाएगी, रूह डालने का हुक्म दिया जाएगा कि डालो इसमें। और जिस घर में तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं आते, बताइए साहब, रहमत के फरिश्तों से अगर दूरी होगी तो क्या हाल होगा। एक साहब ने हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि हजरत मैं इसीलिए कुत्ता अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि कुत्ता इसलिए साथ रखता हूँ ना कि फरिश्ते नहीं आएंगे तो मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा। तो हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तूने बिल्कुल सही किया, आखिर कुछ फरिश्ते ऐसे भी जो है जो कुत्ते की रूह निकालते हैं, कुत्ते की रूह निकालने वाला भी तो कोई फरिश्ता है ना, तेरी रूह भी जो है वही फरिश्ता निकाली जाएगी जो कुत्ते की रूह निकालता है, यानी तू कुत्ते की मौत मरेगा। देखा आपने साहब कैसी कैसी अकलें लड़ाते कि जी हम कुत्ता इसलिए रखते ताकि फरिश्ता ना और हम जिंदा रहे, बस क्या आलम है मेरे दोस्तों। अरे अल्लाह जब अल्लाह ताला जिंदगी दे रहे हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजरे, इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारे और इताअत और फरमाबरदारी में अल्लाह के पास चले जाए, इसमें क्या वो बड़ी बात है। लेकिन हमें मुश्किल मौत इसलिए लग रही है कि हमने आखिरत को आबाद नहीं किया ना, आखिरत को वीरान किया। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि हजरत ये अल्लाह वाले जो मौत का तज़किरा तो ऐसे करते जैसे बड़ी लजीज और मजेदार चीज है। फरमाया नहीं, बात यह है कि हर आदमी को वीराने में जाते हुए घबराहट होती है, आबादी से वीराने में जाने में घबराहट होती है, और कायदा यह है कि वीराने से आबादी में जाते में घबराहट नहीं होती, आबादी से वीराने यानी जंगल में जाए तो घबराहट होती है और जंगल से आबादी में आए तो घबराहट नहीं होती। फरमाया अल्लाह वालों ने दुनिया को दुनिया के मुकाबले में आखरत को आबाद किया, इसलिए उनको आखिरत में जाते हुए घबराहट नहीं होती है। और हमने दुनिया को आबाद किया, आखिरत को वीरान किया, इसलिए हमें मरने का नाम सुनते ही तकलीफ होने लगती है। अगर हम अल्लाह ताला को राजी और खुश कर ले और इताअत और फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारे, फिर कहेंगे कि अब मरना अल्लाह मियां के पास जाना है। अरे वाह वाह, अल्लाह मियां के पास जाने में क्या घबराहट है, वो तो हमारा इतना प्यारा माला है जिसने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी है और हमें पैदा फरमाया है, कितनी प्यारी शरीयत अता फरमाई है, फिर आखिरत मरते हुए थोड़ी तकलीफ होगी। और एक दुनिया, दुनिया क्या चीज है भाई, इससे बढ़कर नेमतें अल्लाह ताला ने रखी है कि जिसको फरमाया कि मा ला आइनुन रात, जो किसी आंख ने देखी नहीं, वला उजुनुन समियात, किसी कान ने सुना नहीं, वला खतरा अला कल्बी बशर, और किसी बशर के दिल में उसका ख्याल भी नहीं गुजरा और ना गुजरेगा। ऐसी नेमतें तैयार करके रखी हुई है अल्लाह ताला ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नजर की हिफाजत करें, औरतों को ना देखें और औरतों मर्दों को ना देखें। ये नहीं है कि अगर मर्द औरत से नजर बचा रहा है तो औरत देख रही है, औरत के भी है कि वो भी मर्दों से नजर बचा, उसको ना देखें। एक काम, और दूसरा काम फरमाते थे कि दूसरा काम ये कर लो, अपनी जबान को काबू में रखो, इस जबान से गीबत मत करो। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफा माह रमजान में ये बात नकल की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुफलिस कौन है, साहबा ने कहा हम तो मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास माल ना हो, जिस बेचारे के पास आईफोन ना हो, या सैमसंग का एंड्रॉइड नोट 3 या S5 ना हो, एक पुराना सा मोबाइल हो बेचारे के पास, वो मुफलिस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो है कि जो जिसने दुनिया में बड़ी इबादतें की, तहज्जुद, जिक्र, नवाफिल, नेक काम, तबलीग में जाना, बुजुर्गों की सोहबत में बैठना, हज, उमरा, इबादत, माल खर्च करना, सब किया, बड़ी नेकियां कमाई, और कयामत के दिन गया, किसी की गीबत की, किसी को सताया, किसी पर जुल्म किया, अब उसकी नेकियां उसको दी जा रही है। और जब इसकी नेकियां खत्म हो गई, अहले हुकूक अभी बाकी है, गीबत जालिम इतनी करता है, अहले हुकूक बाकी हैं, अब उनके गुनाह इसको दिए जा रहे हैं, फरमाया इसको कहते हैं मुफलिस। लिहाजा हम लोग दीनदार कहलाते हैं, लेकिन अल्लाह माफ करे, मेरी मजलिस, हमारी मजलिस गीबत से खाली नहीं है। हम अपनी मजलिसों में गीबत करते हैं और पता नहीं उसका नाम क्या रखा, बाजे कहते हैं कि जी हम तो उसकी इसलाह कर रहे हैं। भाई इसलाह कर रहे तो उसको बोलो जाके, यहां दो आदमी बैठकर उसकी क्या इसलाह कर रहे हैं, मैं आप बैठकर किसी के बारे में बात कर, उसको पता ही नहीं है उसकी इसलाह हो रही है क्या। तो ये जो गीबत है, ये ऐसा गुनाह है कि करना कराना कुछ नहीं, मुफ्त में जूते पड़ना, वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ये मुहावरा है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, कि पता कुछ नहीं चला, ऊपर से जूते अलग पड़े। और उस गीबत का जिसकी इसलाह का दावा था, अगर इसलाह थी तो उसको जाके बोलते कि भाई साहब आप जो ये काम कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, ये अपने बुजुर्गों के खिलाफ है, देखो तुम किस खानदान के शरीफ आदमी हो, ऐसा ऐसा काम मत करो, खानदानी आदमी हो, देखो ऐसी ऐसी हरकत नामुनासिब हरकत है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत को नुकसान पहुंचेगा, जरा देखो अपने बाप को, अपने घर को, हाफिज कुरान हो, जरा कुछ ख्याल करो, ऐसे नामुनासिब हरकतें मत करो, उसको समझाए, अगरचे वो नाराज होता है लेकिन उसको बोले तो फायदा है। अब बंद कमरे में बैठकर मैं और तू वो फला तो क्या हुआ इससे हासिल। और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स गीबत करता है या उसके पास कोई गीबत करे, मनीबा इन दहू अखूहुल मुस्लिम, कि उसके पास कोई गीबत कर रहा है उसके मुसलमान भाई की, और वो इस बात पर कुदरत रखता है कि उसको मना कर सके और मना नहीं करता, तो खज़लहुल्लाह फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत में उसको जलील फरमाएंगे। और जो रोक दे तो नसरहुल्लाह, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएंगे कि तूने एक मुसलमान की गीबत से रोका, तेरी मदद होगी। सुभान अल्लाह। इसलिए गइबत का गुनाह। अब बैठे जी टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास नहीं हो रहा, ये क्या बात है भाई? टाइम पास नहीं हो रहा तो तिलावत करो, बुजुर्गों की किताबें पढ़ो, अल्लाह ताला की मोहब्बत की किताबें पढ़ो, ध्यान सुनो जाकर, अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत की बातें सुनो जाकर। ये रमजान शरीफ कमाने का दिन है, उसमें भी वक्त जाया करना, फुर्सत। अरे मुसलमान को फुर्सत कहा, मुसलमान को फुर्सत कहा, वो तो कहते हैं या अल्लाह मौका मिल जाए तो मैं और नेकी करूं, इतना थोड़ा सा वक्त है इसमें पूरा मौका नहीं मिलता, दिल खोल के आपको याद करने का मौका नहीं मिलता, कभी वक्त खत्म हो जाता है, वो तो बहाने तलाश करता है। और आज हम कहते हैं फुर्सत नहीं है, अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए। और इन दो गुनाहों से रमजान हो या गैर रमजान हो, अगर अभी से मश्क कर ले तो इंशाल्लाह रमजान में बहुत आसानी हो जाएगी, फिर मजे ही मजे होंगे। देखो ना, अगर रमजान के रोजा और रमजान शरीफ के अनवारात का इत्र लगा लिया, और गुनाह की पुरानी आदत है पखाना सूंघने की, तो वो भी अगर जारी रखा तो क्या फायदा होगा? फिर कोई फायदा ना, इसलिए पहले से काम कर ले इन आदत को। अभी माशाल्लाह पूरा महीने से ज्यादा बाकी है, महीना से ज्यादा बाकी है, अभी से इसकी मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, फिक्र कर ले, इसलाह कर ले, इसलाह करवा ले अपने इन आमाल की, ताकि जो है वो हमारा रमजान शरीफ मजे से गुजरे। मेरे शेख फरमाते हैं रमजान शरीफ अपने शेख के पास गुजार दो, खानकाह में गुजार दो, अल्लाह वालों के पास गुजार दो, ताकि रमजान के तकवा का इंजन और अल्लाह वालों की सोहबत के तकवा का इंजन, ये दो इंजन मिल जाए। फरमाया तुम जल्दी ताकि अल्लाह वाले बन जाओ, तो फरमाया जीने में भी मजा आएगा, मरने में भी मजा आएगा। हाँ तो फरमाया देखो तो सही, अल्लाह ताला अपने दोस्तों को देते क्या है, क्या मजा आता। फरमाते हैं जरा तुम उड़ा के तो देखो, उठा के तो देखो, मजे लेके तो देखो, कि अल्लाह ताला अपने आशिकों को मजा क्या अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, अपना क़ुर्ब और ताल्लुक अता फरमाए, और रमजान शरीफ की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल खास फरमाए। वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على يا الله يا الله يا الله بسم الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.